का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपका लौकिक जन्म अफ्रीका में हुआ, छोटी अल्प आयु में ही आपको बाबा का ये ज्ञान प्राप्त हुआ। 1976 में लौकिक परिवार गुजरात में सेटल हुआ और 1980 में 20 वर्ष की अल्प आयु में ही आपने अपना जीवन बाबा की ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। आपने आप कई कंपनियों में, इंडस्ट्रीज में SML कोर्स कराकर अनेक आत्माओं को आपने लाभान्वित किया है। नागार्जुन फर्टिलाइजर में भी आपने कोर्स कराए। 1985 में जब UNO के द्वारा यूथ ईयर मनाया गया तो अपने विश्वविद्यालय की ओर से भी 6 स्थानों से पदयात्रा निकाली गई। सोमनाथ से दिल्ली, बॉम्बे से दिल्ली वाली पदयात्रा का आपने कुशल संचालन किया। भारत से बाहर कई देशों में आपने जाकर के अनेक आत्माओं को योगी बनाया है। आपकी तेजस्वी ओजस्वी वाणी से घर बैठे चैनलों के द्वारा अनेक आत्माओं ने अपने जीवन में परिवर्तन का अनुभव किया है और रामायण और गीता का बहुत सुंदर रूप से आप विश्लेषण करके सब आत्माओं को सच्ची गीता सुनाते रहते हैं। इसलिए आपके लिए मैं 2 शब्द ये कहूंगी। साइंस के साधनों से, साइलेंस की साधना से, शास्त्रों की कथाओं का, जीवन की व्यथाओं का आप सुंदर मर्म, सुकोमल मरहम अनुभवी प्रस्तुत करते हैं। राम के वरदान से, शिव गीता ज्ञान से, सेल्फ मैनेजमेंट का, मेडिटेशन कैंप का आपका रोचक ढंग, रोमांचक उमंग सबको विस्मित करता है। अभी उषा बेन जी से हम क्लास करेंगे समय अनुसार पुरुषार्थ की विधि।
ओम शांति। बाप दादा ने हम सभी बच्चों को समय प्रति समय समय का इशारा दिया है। पिछले सीजन में भी बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे अभी टू लेट का बोर्ड लग गया है। एडवांस पार्टी भी बाबा से पूछती है, प्रकृति भी बाबा से पूछती है कि कब तक तैयार होंगे। और सारा मदार संसार परिवर्तन का हम ब्राह्मणों के ऊपर है। सीजन में जैसे बाबा की मुरली सुनते हैं वैसे एक उमंग आता है, पुरुषार्थ की लहर फैलती है। परंतु धीरे धीरे जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड और फिर से वापस हम अपनी ओरिजिनल चाल में आ जाते हैं। जिस तरह हमें कहीं जाना होता है तो तैयार होते हैं और तैयार होने के लिए हम अपने आप को बाह्य रूप से तैयार कर लेते हैं। स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। इसी तरह बाबा ने भी एक मुरली में कहा है कि एवर रेडी और रेडी होना है। एवर रेडी तो तब बनेंगे हम जब रेडी तो हो, और रेडी होना माना स्वच्छ वस्त्र धारण करना। हमारा स्वच्छ वस्त्र कौन सा है? हमारा स्वच्छ वस्त्र है फरिश्ता ड्रेस, एक चमकीली ड्रेस। और उस वस्त्र को धारण करने के लिए पुराने संस्कार और स्वभाव की ड्रेस को उतारना होगा। जब तक ये ड्रेस हमारी उतरेगी नहीं, पुराने स्वभाव संस्कार की, अगर ये ड्रेस पहन के रखेंगे या इंतजार करते रहते हैं, हो जाएंगे, ड्रेस ही बदली करनी है ना, कर लेंगे। इस प्रकार का आलस्य अलबेलापन हमारे जीवन में अगर आ गया तो तैयार कब होंगे? समय कम है, ये इशारा हमें कई बार मिला है कि समय कम है, बहुत कम है। और अभी दुनिया की हालत को देखते हुए भी महसूस होता है कि हाँ, समय कम है। कई लोग कैलकुलेशन में लग जाते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है हमें। साफ स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे कई बार कई लोगों को बाहर जाना होता है, बार बार उनको कहो चलो तैयार हो जाओ, चलो तैयार हो जाओ। हाँ, हम तैयार हैं, ये कहने के बाद भी 15 मिनट बाद निकलेंगे बाहर तैयार होकर के। इस प्रकार की गति अगर हमारी प्रैक्टिकल स्थिति के लिए रहेगी कि समय का इशारा मिलने के बाद भी अगर हम अपने पुराने स्वभाव संस्कार की ड्रेस को उतारेंगे नहीं और फरिश्ते चमकीली ड्रेस को धारण करेंगे नहीं, तो किस तरह तैयार हुए? कई बार जब योग में बैठते हैं, इस तरह की योग भट्टियां चलती है, उस समय महसूस भी करते हैं कि हाँ, हमने ड्रेस बदल ली है, अब फरिश्ता ड्रेस हमने पहन ली है। खास करके मधुबन आते हैं तो महसूसता होती है कि हाँ, अभी अव्यक्ति चाल हो जाती है, बहुत धीरे बोलते हैं, किसी के प्रति भी कोई अंदर में संकल्प नहीं चलाते हैं। ये महसूसता आती है कि जैसे अभी ड्रेस हमारी बदली हो गई, और दृढ़ संकल्प भी करते हैं कि अब यहां से जाने के बाद भी इसी ड्रेस में हम चलते रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे देखा जाता कि हमारी ड्रेस कब बदल जाती है पता ही नहीं चलता है, और फिर से वो मैलापन आ जाता है, और हमारी ड्रेस को मैला करने वाली कौन सी बात है? तो जैसे ही व्यर्थ संकल्प आरंभ होते हैं, तो ये व्यर्थ संकल्प का मैलापन हमारे स्थिति को भी नीचे ले आने लगते हैं, और जैसे जैसे नीचे आ जाते हैं तो वापस वो पुरानी ड्रेस में आ जाते हैं। जैसे कोई बाहर गांव जाते हैं लेकिन वापस अपने घर में जाते हैं तो वो नए कपड़े उतार देते हैं, पुराने कपड़े पहन लेते हैं। ठीक इसी तरह कई बार हम ऐसे तो नहीं करते हैं कि यहां से गए तो वापस ये फरिश्ता ड्रेस को उतार करके वो पुरानी ड्रेस पहन लेते हैं, और व्यर्थ संकल्प चलाने की जो आदत है वो वापस आ जाती है, और वो व्यर्थ संकल्पों की मैल जैसे अपने ऊपर चढ़ाते जाते हैं। भावार्थ ये कि बाबा जब बार बार हमें कह रहा है, और प्रकृति और एडवांस पार्टी भी बाबा से पूछती है कि कब तक, और पिछले सीजन में भी बाबा ने जब कहा कि विधि परिवर्तन तो होनी ही है, कब तक ये विधि चलती रहेगी? 40 साल से ऊपर बाबा ने अव्यक्त पाठ भी बजा लिया, और इस तरह से देखा जाए तो जो अचानक का खेल है ये प्रैक्टिकल सामने आया है। आज दिन तक जब भी बाबा की मुरली चलती थी और अचानक की बात जब बाबा कहते थे, अक्सर हर एक ब्राह्मण के मन में यही बात आती थी कि अचानक माना दुनिया में कुछ अचानक परिवर्तन शुरू हो जाएगा और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। लेकिन ये कभी नहीं समझा था कि अचानक बाबा का पार्ट भी चेंज हो सकता है। इस बात से हम लोग निश्चिंत थे कि नहीं, बाबा तो अंत तक हमारे साथ है, और इसलिए जब भी बाबा अचानक कहते तो दुनिया में अचानक कुछ न कुछ होगा, और उसको देखने के लिए जैसे हम अपने आप को तैयार करते रहे। लेकिन अचानक का इस सीजन के अंदर जो परिवर्तन आया वो कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इसलिए ये अचानक के परिवर्तन में, क्योंकि हर अचानक के परिवर्तन में हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ प्रेरणाएं मिलती है, तो इस अचानक के परिवर्तन में क्या प्रेरणा मिली है हमें, क्या सीखने को मिला? बाबा हमें यही सिखा रहे हैं कि बच्चे बाहर का अचानक परिवर्तन आरंभ कर ले, लेकिन अगर अंदर की स्थिति हमारी पावरफुल नहीं है तो शायद बाहर के परिवर्तन के समय भी हम हिल जाएंगे। और इसलिए ये अचानक की विधि परिवर्तन हुई तो उसमें सभी ब्राह्मण अलर्ट हो गए, अटेंशन में आ गए, और अपनी स्थिति को परिपक्व बनाना है इस बात के लिए पुरुषार्थ में लग गए। अब महसूस हो रहा है कि हाँ, अचानक कुछ भी हो सकता है, माना बाहर नहीं, पहले तो हमारे ब्राह्मण परिवार के अंदर अचानक कुछ भी हो सकता है, और उसके लिए तैयारी चाहिए। क्योंकि पहला ग्रुप में जब बाबा साकार में नहीं आए तो कई आत्माओं के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ। इस ग्रुप में भी कई भाई बहने आए, प्रश्न किए, और उस समय यही याद आता कि बाबा ने तो पहले से ही इस बात का इशारा दिया था कि बच्चे विधि का परिवर्तन होना ही है। रथ ने काफी समय सेवा की है, विधि परिवर्तन निश्चित है, और जब भी विधि परिवर्तन हुई है तो जो विधि परिवर्तन हुई उसके बाद भी बाबा ने उतना ही भरपूरता का अनुभव कराया है। चाहे पहले एक एक से इंडिविजुअल मिलते थे और वो भरपूरता जो होती थी, उसके बाद बाबा सेंटर वाइज मिले तो भी बाबा ने वो भरपूरता की फीलिंग दी, उसके बाद बाबा जोन वाइज मिले तो भी बाबा ने भरपूरता की फीलिंग दी, और उसके बाद बाबा जैसे आम मुरली में मिलते रहे तो भी बाबा ने एक एक को भरपूरता का अनुभव कराया। और इसलिए इस विधि परिवर्तन में भी जो पिछली बार हमने महसूस किया डबल विदेशियों के ग्रुप में कि हाँ, शुरू में तो हरेक के संकल्प चले, लेकिन जैसे ही उस स्थिति को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस लेवल हमारा बढ़ गया, तो एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ने के बाद बुद्धि को फुल स्टॉप लगा दिया, कोई संकल्प नहीं, इसमें भी बाबा भरपूर करेगा, और ये महसूस हुआ कि जब आदरणीय गुलजार दादी जी वतन से संदेश लेकर के आए तो उस संदेश में भी हरेक को भरपूर होने का अनुभव हुआ। भावार्थ ये कि मेन बात है अपनी आंतरिक स्थिति की, कि हमारी आंतरिक स्थिति कितनी पावरफुल है। कोई भी परिस्थिति भी जब दुनिया में आती है, कोई भी घटना जब घटती है, अक्सर लोग कह देते हैं हमारा हिसाब किताब। लेकिन बहुत सुंदर बात मुझे महसूस हुई जब हम किसी बड़े महारथी भाई बहनों से बातचीत कर रहे थे तब, कि जब भी कोई घटना घटती है, जब भी कोई परिस्थिति आती है, तो वो परिस्थिति हमें एक मौका देती है अपनी स्थिति को देखने का। ये हमारे स्थिति के लिए एक चेकिंग का पेपर होता है कि हमारी स्थिति अंदर से कितनी पावरफुल है, पता चलता है। हिसाब किताब कह करके छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छी बात उस बातचीत के दौरान निकली कि ब्राह्मण जिस दिन से बने, माना हमारे हिसाब किताब पूरे हुए तब हम ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण बनने के बाद अगर कोई भी बात आती है तो ये टेस्ट पेपर है हमारी स्थिति के लिए। जैसे स्कूलों में यूनिट टेस्ट चलती रहती है ताकि पता चले, तो ये भी एक यूनिट टेस्ट है हमारे लिए कि हमारी स्थिति कितनी मजबूत हुई है। हिसाब किताब कह देंगे तो शायद उससे नेगेटिव विचार भी उत्पन्न होंगे, व्यर्थ विचार भी चलेंगे। लेकिन जब ये समझेंगे ये टेस्ट पेपर है, हमारी स्थिति कितनी पावरफुल है उसको देखने के लिए, तो उससे हमें पता चलता है कि कितनी पावरफुल स्टेज हमने प्राप्त किया है और क्या पुरुषार्थ, किस दिशा में पुरुषार्थ हमें करना है, कौन सी शक्ति को धारण करने का पुरुषार्थ हमें करना है। उस शक्ति को धारण करने के लिए फिर हमें प्रेरणा प्राप्त होंगी और उस दिशा में हम पुरुषार्थ करना आरंभ करेंगे। भावार्थ ये बहुत सूक्ष्म बात है ये कि ब्राह्मणों के लिए जब भी कोई बात आती है, पेपर आता है, टेस्ट पेपर, चाहे वो शारीरिक कर्म भोगना का हो, चाहे वो संबंध संपर्क में हो, चाहे वो परिस्थिति के द्वारा हो, समस्याओं के रूप में हो, लेकिन ये सब यूनिट टेस्ट पेपर है। फाइनल टेस्ट पेपर जब एक साथ आने हैं, उसके पहले यूनिट टेस्ट पेपर्स तो आने ही है। इसलिए हिसाब किताब कह करके दिल शिकस्त नहीं होना है, लेकिन जब ये देखेंगे कि ये टेस्ट पेपर है तो हमारा पूरा नजरिया बदल जाएगा, पुरुषार्थ के लिए एक दिशा मिल जाएगी और शायद हमें पता चलेगा कि हम उस समय पेपर में हिले या नहीं हिले, कितना हलचल में आए और कितना हम अपने आप को स्थिर रख पाए, कितनी बाबा की याद इसमें रही और किस प्रकार से हम आगे बढ़े या पीछे हटे, ये हमें पता चले। तो ये सारी बातें टेस्ट पेपर से। दुनिया में भी कहा जाता है कि जब एक द्वार बंद होता है तो दूसरा खुलता है, लेकिन जो खुल रहा है वो दिखाई देना चाहिए। महत्व की बात ये है कि जो खुल रहा है वो दिखाई देना चाहिए। बंद हो रहा है वो दिखाई देता है जब, और उसको जब देखते हैं और वो खुल रहा है वो अगर नहीं देखेंगे तो भी दिल शिकस्त हिल जाएंगे अंदर में। इस तरह से जब कई बार कई लोगों ने कहा कि बाबा क्यों नहीं आए, कईयों ने तो यहां तक कह दिया दूसरा रथ भी ले सकते हैं, कई और संकल्प चलाने लगे, कई और सजेशंस देने लगे, ये सोचा कि बस ये द्वार बंद हो रहा है, हम तो अभी आए हैं, हमें भी मिलना चाहिए, कई प्रकार के संकल्प चले। भावार्थ ये है कि जब एक द्वार बंद होने लगता है तो दूसरा तो खुलता है। वो कौन सा खुला? तो बाबा ने शुरू में कहा है कि आगे चल करके जब समय और परिस्थिति ऐसी आएगी तो जो आदि का पाठ सो अंत का पाठ होगा। आदि का पाठ बाबा ने साक्षात्कार की लीलाओं के द्वारा हरेक की पालना की, और ये भी बाबा ने कहा है अंत में भी इस साक्षात्कार की लीलाओं का पाठ आरंभ होगा। तो ये द्वार अभी खुल रहा है। और कई लोगों ने पिछले ग्रुप में हमने देखा, विदेशियों के ग्रुप में, जब इस बात को फुल स्टॉप लगा दिया, उन्होंने कोई संकल्प नहीं चलाए, तो बाप दादा के दिन जब बट्टी चली सारा दिन, और शाम के समय जब इतना पावरफुल वातावरण यहाँ हो गया था, जैसे अव्यक्त बाप दादा के समय पावरफुल वातावरण हो जाता है, 21 भाई बहन ने स्टेज पर बैठे थे योग कराने के लिए, और इतना सुंदर वो वातावरण था कि हर एक ने दिव्य बुद्धि द्वारा अनुभव किए। ये प्रत्यक्ष है। कईयों ने आकर के मुझे सुनाया कि हमने महसूस ही नहीं किया बाबा नहीं आए, लेकिन हमें बहुत सुंदर अनुभव हुआ उस योग में। भावार्थ ये कि बुद्धि के द्वारा अभी अनुभव करने का पाठ आरंभ हो रहा है, ये द्वार खुल रहा है। लेकिन ये द्वार जैसे जैसे खुलता है उसके लिए हमारी तैयारी क्या है? क्योंकि किसको अनुभव होगा? वो साक्षात्कार की लीला का अनुभव भी किसको होगा? तो बाबा की वो मुरलियां याद आती है कि जब बाबा ने कहा था कि बच्चे, जिसकी बुद्धि प्लेन बुद्धि होगी, निरसंकल्प अवस्था होगी, बाबा जो उनको टचिंग्स करेगा उसको कैच करने की क्षमता होगी। तो टचिंग पावर और कैचिंग पावर। भावार्थ ये कि हमें भी अपनी बुद्धि को अब समय के हिसाब से इतना दिव्य और पवित्र बनाना है कि बाबा जो हमें देना चाह रहा है वो अव्यक्ति पालना का अनुभव, वो दिव्य अनुभव जो हमें बाबा देना चाह रहा है, ये द्वार अभी खुल रहा है। और ये दिव्य अनुभव माना, अब तक हम अव्यक्त बाप दादा की अंगुली पकड़ करके चल रहे थे। जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो पाठ बाबा ने बजाया, और दादियों को भी ये एक आदत पड़ गई थी कि साकार बाबा हमेशा हमारे साथ रहेंगे और ये अंगुली कभी छूटेगी नहीं। लेकिन जब वो परिवर्तन आया तो अव्यक्त पालना के भी अनुभवी हो गए। उसको कैच करना, उसको अपने अंदर में महसूस करना, अनुभव करना, वो और भी पावरफुल हो गया। साकार ब्रह्मा मुख वंशावली थे, लेकिन उसके बाद अव्यक्त बाप दादा की संकल्प की रचना और भी पावरफुल आई। ये भी उन्होंने देखा के संकल्प की रचना, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में जाने के बाद जो संकल्प की रचना क्रिएशन हुई, वो संकल्प की रचना भी कितनी पावरफुल रही। और इसलिए ब्राह्मण आदति हो गए थे कि अव्यक्त बाबा तो अंत तक हमारे सामने साथ रहेंगे ही, और ये अंगुली पकड़कर चलने की एक आदत पड़ गई। लेकिन अब बाबा हमें ये सिखाना चाह रहे हैं कि नहीं बच्चे, अब अपने पैरों पर भी खड़ा होना है। अब सब बड़े हो गए, अपने पैरों पर खड़ा होना माना अपनी बुद्धि को इतना दिव्य बनाए, अपनी बुद्धि को इतना सूक्ष्म बनाए, इतना प्लेन बुद्धि बनाए, पवित्र बुद्धि बनाए कि बाबा जो हमें अव्यक्त पालना देना चाह रहा है, जो बाबा टचिंग्स देंगा और जो बुद्धि कैच करने की क्षमता में होगी, और उससे जो स्थिति इतनी पावरफुल बनेगी कि बाहर की परिस्थिति या हलचल कैसी भी आए, लेकिन वो कैसी भी परिस्थिति में भी हम हलचल में न आए, ये बाबा अभी हमें देना चाह रहा है। और इसलिए अपनी बुद्धि की परिपक्वता, ज्ञान और योग बल से इतना हमें सशक्त करना है अपने आप को भीतर से कि बाबा कल हमें जो देना चाह रहा है, हर प्रकार के संकल्प विकल्प को हम फुल स्टॉप लगा दें, और फुल स्टॉप लगा करके इतनी बुद्धि को प्लेन कर दे, बुद्धि को ऐसे सरेंडर कर दे बाबा के आगे। और जब समर्पित हो जाती है वो बुद्धि, तो बाबा जो देना चाह रहा है वो बुद्धि उसको ग्रहण करती जाए, और बुद्धि जो आज दिन तक अनुभव नहीं किए, ये अनुभव हम कल शाम के सत्र में करें। बाबा ऐसा हमें तैयार करना चाहते हैं। तो अचानक के खेल में फायदा भी होता है, प्राप्तियां भी होती है, अपने आप को देखने का एक मौका भी मिलता है, और किस एंगल से हमें अपने आप को सशक्त करना है ये भी हमें मालूम पड़ता है कि आने वाले समय में, ये तो एक जैसे झलक बाबा ने दिखाई दो टर्न की, लेकिन आने वाले सालों में, आने वाले समय में ये पाठ धीरे धीरे कब तक चलता रहेगा। बाबा ने कई बार कहा कब तक, कब तक, विधि तो परिवर्तन होनी ही है। और इसलिए दुनिया की हालातें भी ऐसी हो जाएंगी जो अब तो यहां तक हम पहुंच भी सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में यहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो बुद्धि की दिव्यता अगर हमने बनाई होंगी, बुद्धि को इतना सशक्त बनाया होगा, साइंस के ये साधन जब फेल हो जाएंगे उस समय घर में बैठे वो स्थिति, तो यहां जब अभ्यास किया होगा, यहां जब उसका अनुभव प्राप्त किया होगा, तो यही आधार बन जाएगा उस समय के लिए। और उस समय थैंक्स निकलेगा कि बाबा अचानक के खेल में जो आपने हमें पक्का कराया था वो हमने अनुभव घर बैठे भी किया, और उस समय अंदर से निकलेगा वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, कितना सुंदर बाबा ने हमें पहले से तैयार कर दिया। भावार्थ ये कि बाबा जब बार बार रेडी होने के लिए, एवर रेडी होने के लिए कहते हैं, तो हमें किस तरह समय अनुसार अपने पुरुषार्थ की विधि को भी बनानी है, ताकि हम आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कर लें। और जब बाबा कहते हैं एवर रेडी बनना है, तो उसके लिए जैसे एक बात तो हमने देखी कि बुद्धि को अभी फुल स्टॉप लगाना, क्योंकि बाबा ने कई बार हमें ये बात कही है फुल स्टॉप लगाओ, तीन बिंदी लगाओ, लगती ही नहीं थी, कई बार बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क लग जाते थे, लेकिन अब जब अव्यक्ति पालना का अनुभव करना है, वो दिव्य बुद्धि के द्वारा अनुभव करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो उसके लिए जितना बुद्धि प्लेन हो जाएंगी, साफ स्वच्छ हो जाएंगी, कोई व्यर्थ का दाग उसमें नहीं होगा, तो उसको सहज अनुभव कर सकेंगे और अपने आप को भरपूर कर सकेंगे। दूसरी बात कि जब बाबा हम बच्चों को एवर रेडी कहते हैं, तो समय अनुसार अभी पुरुषार्थ यही है कि जैसे करण करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित हूं, करती जा रही हूं, ये सरेंडर भाव, जितना हमारी बुद्धि सरेंडर होगी, तो बुद्धि की दिव्यता के साथ साथ बुद्धि जितनी सरेंडर होंगी, तो बाबा आपको इंस्ट्रूमेंट के रूप में कहां भी यूज कर सकता है। क्योंकि अब दुनिया के अंदर जब संदेश पहुंचने का कार्य तीव्र गति पकड़ चुका है, चाहे मीडिया के द्वारा वो संदेश पहुंचने का कार्य है, चाहे आपकी दिव्यता की स्टेज के द्वारा अनेकों को घर बैठे आपका साक्षात्कार होगा, आपके द्वारा बाप दादा का साक्षात्कार होगा, और आपकी स्थिति जैसे समय से पहले जब तैयार मूर्ति की तरह हो जाएगी, तो बाबा आपको मीडियम बना करके, आपको इंस्ट्रूमेंट बना करके आपके द्वारा अपना कार्य करेगा। बाबा को अभी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ये नहीं अब लेते ही जाए लेते ही जाए लेते ही जाए। अब बाबा आपके द्वारा किसी को कुछ देना चाह रहा है, तो उसके लिए बाबा को ऐसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जिसकी मनसा शक्ति का प्रयोग ऐसा हो, क्योंकि जीवन अगर हमारी लैबोरेटरी है, तो इस जीवन की लैबोरेटरी द्वारा जो हमने प्रयोग किए हैं, ये प्रयोग में और प्रवीण हो जाए हम, और इस प्रयोग में जैसे हम अपनी मनसा पावर के द्वारा दूर बैठे भी आत्माओं को अनुभव कराए शिव बाबा का, बाप दादा का, तो ये बाबा हमसे चाहते हैं। अभी बाबा की आश ये है कि मेरे हर बच्चे तैयार हो जाए, तो इसलिए करण करावनहार बाबा तभी हमारे द्वारा कराएगा जब हमारी बुद्धि सरेंडर होंगी। अगर हमारी बुद्धि के अंदर अभी तक भी मन मत परमत का प्रभाव चलता रहा, उसी कशमकश में चलते रहे हम, अनेकों के बातों के प्रभाव में चलते रहे, तो बाबा जो हमें जिस तरह से यूज करना चाहते हैं वो यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम रेडी ही नहीं है। तो रेडी होना माना सरेंडर बुद्धि, करण करावनहार बाबा कराएगा, और जो कराएगा बहुत अच्छा कराएगा, और इस तरह से आपके द्वारा घर बैठे भी अनेकों को ये अनुभव होगा, लोग आपको ढूंढते हुए आपके पास पहुंच जाएंगे, तो ये बाबा अनुभव कराना चाहता है। ये गति अभी जितनी तीव्र होगी दुनिया के अंदर, उतना बाबा की प्रत्यक्षता का अनुभव सामने दुनिया के अंदर आ जाएगा। तो क्यों नहीं मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनूं जो मैं बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए अपने आप को तैयार कर दूं। तो ऐसे तैयार रहेंगे ना, उसके लिए सरेंडर बुद्धि होना बहुत जरूरी है। तो एक तो प्लेन बुद्धि, दिव्य बुद्धि, दूसरा सरेंडर बुद्धि होना है, कि जितना सरेंडर होंगे बाबा यूज करेगा। तीसरी बात, केवल रेडी होना मतलब कि हमारे पास जमा का खाता इतना अधिक हो कि कैसी भी आत्मा कभी भी हमारे पास कोई अंजलि लेने के लिए आए तो वो स्वतः प्राप्त कर सके, जितना चाहे ले सके। ये नहीं कि हम उसको थोड़ा थोड़ा देवे, नहीं, इतना जमा का खाता हमारा भरपूर हो कि हम खुले रीति से बांट सके लोगों को। अंत में जो आने वाली आत्माएं हैं, जिस तरह जापान के अंदर भूकंप जब हुआ था तो कितनी आत्माएं शांति के लिए, शक्ति के लिए अनेक स्थानों पर जाती रही, और जब बाबा के बच्चों के पास भी आती थी और महसूस करते थे कि हमको वो शांति और शक्ति यहां से प्राप्त हुई। भावार्थ ये कि जमा का खाता हमारा इतना भरपूर हो कि जिसको जो चाहिए वो उस समय हम खुले दिल से बांट सके, महसूस करा सके, और उनका भी योग लग जाए, ऐसी अपनी स्थिति हो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने योग की स्थिति ऐसी बनाओ, पावरफुल स्थिति हो, जो आपके तरंग ही इतने पावरफुल लाइट और माइट का अनुभव, सुख शांति का अनुभव अनेक आत्माओं को कराए। तो लाइट और माइट की शक्तिशाली स्थिति हमारी हो, और ये लाइट और माइट स्वरूप की स्थिति कैसी हमारी बनेगी, तो जिसके लिए बाबा ने हमें बार बार अभ्यास कराया, दो सीजन चाहे पांच स्वरूप का अभ्यास करो, साकारी आकारी निराकारी में आने जाने का अभ्यास करो, हर घंटे का अभ्यास करो, ये विभिन्न तरीके से बाबा ने हम बच्चों को अभ्यास कराया। और यही प्रेरणा दी के साल भर में भी अभ्यास जारी रखो। लास्ट में जब बाबा ने कहा कि बच्चे ज्वालामुखी स्वरूप का अभ्यास करो, ज्वाला स्वरूप योग हो, यानी निराकारी बीज स्वरूप स्थिति का अभ्यास इतना पावरफुल हमारा हो कि कोई भी बात आए मन के अंदर, कोई भी ऐसा व्यर्थ संकल्प अगर उत्पन्न होने के कोई संभावना भी हो तो वो वहीं जल जाए, उत्पन्न होने से पहले ही इतनी पावरफुल शक्तिशाली स्थिति हो हमारी, ये ज्वाला स्वरूप माना ही एकदम बुद्धि हर एक बात से साफ हो, क्लीन क्लियर हो, कोई और बात मन के अंदर बुद्धि के अंदर डिस्टर्ब करने वाली न हो, बीज रूप जैसे सशक्त सर्व शक्तियों संपन्न, सर्व वरदानों से संपन्न, सर्व प्राप्तियों से संपन्न, इतनी भरपूरता की अवस्था हो, और ऐसी पावरफुल लगन की अगन हमारी हो। जब ये योग के लगन की अगन होंगी तो यही अगन ज्वाला स्वरूप की स्थिति होंगी, जिससे हम अपने आप को तैयार कर सकेंगे और दूर तक भी बैठी हुई आत्माओं को महसूस करा सकेंगे, साक्षात्कार करा सकेंगे, उनको अनुभव करा सकेंगे, और उस समय हमें ये महसूस होगा, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा कि अंतिम प्रत्यक्षता के क्षण में बाबा ने हमें भी यूज किया है और हमने भी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है, तो उससे जो एक आत्मसंतुष्टि होती है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि वाणी द्वारा कहां तक कर पाएंगे, फिर भी एक लिमिटेशन आ जाती है, लेकिन संकल्प रूप में कोई लिमिटेशन नहीं है। आप बेहद में देश विदेश के अंदर जाकर के अपने ये श्रेष्ठ संकल्प की स्थिति द्वारा अनेकों को जो देना चाहे वो दे सकते हैं, या जो आत्माएं लेना चाहे आपसे वो ले सके, ऐसी पावरफुल स्टेज हो। तो ये पावरफुल लाइट और माइट की शक्तिशाली स्थिति, ज्वाला रूप का अभ्यास जितना हमारा बढ़ेगा उतना ही हम अनेकों को देने के लिए जैसे सशक्त बन जाएंगे। इसको कहते हैं एवर रेडी स्थिति या समय अनुसार पुरुषार्थ की विधि। और अंतिम विधि यही है कि अंतिम पाठ जो गीता का है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, तो अभी समय अनुसार जो मोह की रगे हैं इधर उधर लगी हुई, अब ये सब किनारों को धीरे धीरे हम बाबा के साथ जोड़ते हुए स्वयं को फ्री करते जाए, हर एक को बाबा के साथ जोड़ने का काम। ये भी नहीं कि हमें छोड़ देना है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जहां भी हमारा मोह है उसको बाबा के साथ जोड़ते जाए। जब उसको बाबा के साथ जोड़ेंगे तो वो कंप्लेन समाप्त होंगी, अगर आप छोड़ देंगे तो शायद कंप्लेन्स होंगी, वो आपको खींचने का अनुभव करेंगे। जैसे दादी जानकी हमेशा अपने अनुभव में सुनाती है कि दादी जानकी कहती है कि एक बार उन्होंने साकार बाबा से पूछा कि बाबा मैं तो किसी को याद नहीं करती हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी जैसे योग में डिस्टर्बेंस का अनुभव होता है, तो उस समय बाबा ने साकार में भी उनको यही कहा था कि बच्ची तुम्हारा मोह किसी से नहीं है, लेकिन किसी किसी आत्माओं का तेरे साथ जो लगाव है, मोह है, उस कारण वो जब संकल्प चलाते हैं तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के निमित्त बन जाते हैं। भावार्थ ये कि हमारा मोह न हो, लेकिन जिसका हमारे साथ मोह है, क्योंकि हमने उसको बाबा के साथ जोड़ा नहीं है, इसलिए वो अभी तक भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो जब तक हम उस बात को भी क्लियर न करें कि उनको भी बाबा के साथ जोड़ते हुए ये श्रेष्ठ पुण्य का कार्य करें कि उनको भी बाबा के साथ जोड़ना है, और ये जब श्रेष्ठ कार्य करेंगे तब वो आपके योग में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट नहीं करेंगे, आपको फ्री कर देंगे, तब आपकी स्थिति एकदम एकाग्र हो जाएगी, जहां मन बुद्धि की एकाग्रता हो जाएंगी और निरंतर स्मृति स्वरूप बनने के लिए हम तैयार हो जाएंगे कि वो लिंक हमारी टूटे नहीं, चाहे उठते बैठते चलते फिरते कर्म करते कभी कहीं पर भी हो, लेकिन वो बुद्धि की लिंक हमारी टूटे नहीं। इतना हम अपने आप को तैयार कर दे कि निरंतर वो लिंक हमारी जुटी रहे और नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप और स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप हमारा बन जाए, उनको भी सकाश देते जाए, बाबा की शक्तियों का दान देते जाए, बाबा के साथ उनका संबंध जोड़ दे, तो हमारी योग की स्थिति इतने निर्विघ्न हो जाएंगी, कोई भी व्यक्ति की याद हमारे याद में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए निमित्त नहीं बन सकती है। तो इसलिए कहा कि बाबा अब अव्यक्ति पालना जो हमें देना चाह रहा है, उसके लिए हम अपने आप को ऐसे तैयार कर लें कि कोई भी प्रकार की बात हमारे मन बुद्धि को अभी हिला न पाए, हमें किसी भी तरह से विचलित न करे, योग की परिपक्व अवस्था हमारी ऐसी बन जाए और जो बाबा हमारे द्वारा कार्य कराना चाहता है उसके लिए हम अपने आप को ऐसा पात्र बना दे। तो यही अभी समय अनुसार पुरुषार्थ की विधि है कि हम ऐसा पात्र बन जाए कि बाबा हमें यूज करे, बाबा जो देना चाहता है उसके लिए हमारी मन और बुद्धि खुली रहे, बुद्धि की दिव्यता और सरेंडर बुद्धि के साथ जब हम बाबा के सामने हैं तो बाबा हमको यूज करने लगेंगे। तो ये है वर्तमान समय के इशारे को समझते हुए पुरुषार्थ की विधि को अपनाना। तो बाबा वतन के अनुभव यहाँ बैठे भी कराएंगे, दिव्य साक्षात्कार की लीलाओं का पाठ भी हम प्रत्यक्ष में अनुभव करेंगे, और साथ ही साथ एक ही स्थान पर बैठे कई आत्माओं को बाप दादा का साक्षात्कार कराने के लिए भी निमित्त बन जाएंगे। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य होगा, निमित्त बनने का भी एक भाग्य कितना श्रेष्ठ होता है, ये भी बाबा ने हम बच्चों को सुनाया है। तो क्यों ना हम अपने आप को ऐसे निमित्त बना दे कि कहीं पर भी किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हो, लेकिन वहां से बाबा मुझे यूज करे विश्व सेवा के लिए, प्रत्यक्षता के पर्दे को खोलने के लिए। अब ये समय आ चुका है, इसलिए बाबा जब बार बार कहते हैं समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, अचानक का खेल होना है, तो अचानक का खेल तो ब्राह्मण परिवार में ही हमने अनुभव किया, तभी बाहर की दुनिया में अचानक का खेल शुरू होगा। और साथ ही साथ एवर रेडी बनना है, तो एवर रेडी भी किस स्वरूप से हमें अपने आप को तैयार करना है, अब वो ड्रेस को पहनना है और वो ड्रेस पहनते हुए सदा उस ड्रेस में सजे सजाए रूप में रहे, चाहे यहाँ है चाहे यहाँ से जाने के बाद अपने घर में भी हो, तो भी वो ड्रेस पहन करके ही रहे। अब पुराने स्वभाव संस्कार वाली ड्रेस को उतार करके फेंकना है, अब वो जर्जर हो गई है, एकदम फटने लगी है, खुद भी उससे तंग हुए पड़े हैं। तो अव्यक्त फरिश्ता ड्रेस हमारी कितनी सुंदर है, उस ड्रेस में जितने सेट आपको चाहिए बाबा देने के लिए तैयार है। तो इसलिए उस ड्रेस पहन करके सदा एवर रेडी स्थिति में हम रहे। तो ये है वर्तमान समय अनुसार पुरुषार्थ की विधि। तो जो कहा धीरे धीरे एक द्वार बंद हो करके दूसरा द्वार खुल रहा है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना। अभी हम सभी योग में बैठेंगे और जैसे कहा उस पावरफुल स्टेज में योग युक्त स्थिति, ज्वालामुख ज्वाला स्वरूप स्थिति में अपने आप को ले चलेंगे। बुद्धि एकदम फुल स्टॉप, कोई भी संकल्प विकल्प न चले, ऐसी पावरफुल निराकारी स्वरूप में नमः शाम का समय। भक्ति में भी कहा जाता देवताएं घूमने निकलते हैं, चैतन्य देवी देवताएं हम सभी हैं, मंदिरों में लोग हमारा आवाहन कर रहे हैं। तो चलिए नमः शाम के समय बाबा के संग हम भी अनेक आत्माओं को बाप दादा का साक्षात्कार कराएं। जितनी शारीरिक एकाग्रता होगी, मन बुद्धि की एकाग्रता को ले आना स्वाभाविक होगा। कोई भी बीच में से उठेगा नहीं, जो जहां भी है वही सेट हो जाए। अपनी फरिश्ता ड्रेस पहनकर आकारी स्वरूप में स्थित हो, सूक्ष्म वतन में सतगुरु बाबा के सामने स्वयं को देख रही हूं। नमः शाम के समय अव्यक्त बाप दादा के सामने बाप दादा से अव्यक्त मिलन मना रही हूं। बाबा के नैनों से असीम प्यार, और उस प्यार के सागर में मैं समा जाती हूं। कितना सुंदर अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रही धीरे धीरे नमः शाम के समय बाबा के संग अनेक मंदिरों में भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भ्रमण पर निकलते हैं। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा बाप दादा से सकाश बाबा भक्तों की शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। कितना सुंदर अनुभव है ये। धीरे धीरे मैं इस अव्यक्त फरिश्ता ड्रेस को भी छोड़ते हुए अपने निराकारी स्वरूप में परम धाम की ओर जहां बाबा भी प्रकाश पुंज स्वरूप में बीज रूप में और मैं आत्मा भी प्रकाश पुंज स्वरूप में एकदम हल्कापन लाइट और माइट स्वरूप में निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी स्वरूप में बाबा से पावरफुल सकाश अनुभव कर रही हूं। धीरे धीरे मैं आत्मा शुद्ध बेदाग हीरे की तरह चमकने लगती हूँ। चारों ओर लाइट का ओरा, उस लाइट के प्रभा मंडल में स्वयं को देख रही हूं। मैं आत्मा निराकारी बीज स्वरूप हूं, भरपूर हूं, बाबा के साथ एक पावरफुल लगन, लगी हुई है। धीरे धीरे उस लगन की अगन को प्रज्वलित करती हूं। धीरे धीरे ये ज्वाला का स्वरूप और इस ज्वाला स्वरूप में मुझ आत्मा में दिव्यता का निखार सतो प्रधानता का निखार अनुभव कर रही हूं।